है उसे भक्त कहते हैं। तो भक्त बनने के लिए कोई कीमत लग रही है क्या? बहुत ज्यादा? वो भी जरूरी नहीं कि आपके पके हुए ही फल होने चाहिए। जैसे आज हमारे बीच देवेंद्र जी पधारे हैं, वो आम लेकर के आए, तो उन्होंने हमें दिया आम कि आप ले जाओ, ये पता नहीं कि कच्चे हैं कि पके। उसको बोला तो था भाई पके पके देना दुकानदार को, लेकिन ये पता नहीं कि ये कच्चे हैं या पके हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे भी हैं दे दो, उन्हीं के कच्चे पक्के सब उन्हीं के हैं, अगर प्रेम से दिए गए तो भगवान अवश्य ग्रहण। माता शबरी के कौन से ऐसे इम्पोर्टेड बेर थे, और बेर ऐसे फल हैं जो प्रायः बेचे भी नहीं जाते, बहुत ही कम आपको मार्केट में बेर बिकते हुए दिखाई देंगे, जहाँ बहुत ही ज्यादा, और वो भी ग्रामीण स्तर पर लोग बेरों को खरीदते हैं। शहर के अच्छे अच्छे लोग तो लीची खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं, न जाने क्या क्या बढ़िया बढ़िया फल लोग लेते हैं, तरबूजे बेर, ये सब चीजें छोटे स्तर के लोगों को पसंद है। तो शबरी माता के पास ऐसा क्या था, लेकिन उनके बेर खाए भगवान ने। सुदामा जी के चावल खाए, वो कौन से? देहरादून के राइस थे, सड़े गले चावल थे, पर छीन के खाए। कैसी विचित्र भगवान की लीला है। इससे पता चलता है कि भगवान का भक्त बनना कितना सहज और कितना सरल है। कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, कोई जाति पाति ऊंच नीच, यहाँ तक पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि आप बड़े होने चाहिए। बालक का तो कोई भाव ही नहीं देता, बोले बालक की क्या मुंह लगना। बोले अगर बालक भी हैं तो भी भगवान स्वीकार करते। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक, 5 साल लगता है कई बार सुनने में ज्यादा, लेकिन 5 साल का बच्चा खड़ा कर दो तो पता चलता है ये क्या बालक है। और भगवान उनके बन गए। तो भगवान का भक्त बनना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि इससे सरल और कोई काम है ही नहीं। लेकिन साथ में देखो कितना सरल है कि किसी के पास पत्ता नहीं तो उसका क्या, बोले वो भी वैष्णव बन सकता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले एक बार जिसके मुख से कृष्ण नाम निकल जाए, एक बार, बोले वो क्या बन गया, वैष्णव। ऐसी विचित्र बात है। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में थे, वहां पर वैष्णवों ने पूछा, गांव के वासियों ने पूछा, महाप्रभु वैष्णव किसको कहते हैं? बोले जिसके मुंह से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए वो वैष्णव। फिर एक वर्ष बाद पूछा, महाप्रभु वैष्णव किसको कहते हैं? बोले जिसके मुख से निरंतर नाम निकलता रहे वो वैष्णव है। वो वैष्णव है। फिर एक वर्ष बाद पूछा, महाप्रभु वैष्णव किसको कहते हैं? बोले जिसको देख के दूसरे लोग कृष्णन का नाम मुंह से निकालने लग जाएं, जिसको दर्शन करके दूसरों के मुख पे हरे कृष्ण आने लग जाए वो वैष्णव। बोले इन तीनों में क्या अंतर है? बोले तीन तीन स्तर के वैष्णव हैं, एक कनिष्ठ वैष्णव, एक मध्यम वैष्णव और एक उत्तम वैष्णव। तो वैष्णव बनना सरल तो बहुत है, लेकिन भैया उत्तम वैष्णव बनना इतना सरल नहीं है। उत्तम वैष्णव बनना इतना सरल नहीं, ये सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। भगवान तो इतने दया में है कि पूतना जैसी राक्षसी को भी, जो कृष्ण के पास गई, कृष्ण को जहर देने के लिए ही गई, दूध के माध्यम से जहर पिलाना चाहती है, तो कृष्ण कह रहे हैं ये मेरे प्रति निष्ठा करके आई है, तो चलो हम इसके जहर को ही पी लेते। दूध की भावना से ये तो कोई बात नहीं, इसको माँ ही बना लेते हैं, अपनी दूसरी माँ बना लेते, दाई बना लेते, कितनी बड़ी कृपा कर दिया। भगवान प्रकट काल में अद्भुत कृपा कर, लेकिन हमें ऐसी कृपा चाहिए तो सच्चा वैष्णव बनना पड़ेगा, उत्तम वैष्णव बनना पड़ेगा। उत्तम वैष्णव बनने के लिए इतना सरल नहीं है। उत्तम वैष्णव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान की भक्ति के साथ साथ हमें, जैसे कि हमने बताया, भक्ति करने के लिए निकल पड़ा कोई, तो उसने संसारी विषयों का त्याग किया। और संसारी विषयों का त्याग किया तो कुछ पाने के लिए किया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने विषयों का त्याग कर दिया, अभी भोगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, दुनिया के ऐश्वर्य की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो विशेष रूप से मनुष्यों को ये अधिकार दिया, तो मनुष्य तो बिना फायदे के लघु शंका भी नहीं करता, किसी की उंगली कट जाए बोले थोड़ा इस पे पेशाब कर देना, तो बोले फायदा क्या हो, ये मनुष्य की प्रजाति है, हर जगह पे सोचता है फायदा क्या होगा यहां से। तो संसार की विषय वस्तुओं का त्याग, भोग ऐश्वर्य का त्याग ऐसे थोड़ी करें। जैसे एक जगह से आपको इनविटेशन आए, भाई यहाँ पर आपको हाँ पूरी और बूंदी के लड्डू और सब्जी आदि के साथ आपको पंगत में इनविटेशन दिया गया, इतनी देर में दूसरी जगह से इनविटेशन आ जाए, आपको यहाँ रसगुल्ला, रस मलाई और 11 तरह की सब्जी, काजू आदि की सब्जी आप मिलेंगी, पनीर आदि मिलेगा, एक और आपको गंगा फल की सब्जी थी, बूंदी का लड्डू था, नमक और हरी मिर्च साथ में दिए जा रहे थे, पूड़ी दी जा रही थी, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पूड़ी, तरह तरह की पूड़ी, तरह तरह के परांठे, और आपको रस मलाई, बर्फी, रसगुल्ला, न जाने कौन कौन सी सब्जियां होती, शाही पनीर, ये पनीर, वो पनीर, हाँ मशरूम आदि, राम जाने हमने तो इतना खा नहीं पाए जीवन। तो अब आपसे पूछा जाए भाई किधर जाओगे खाने, तो किधर जाएंगे फिर हम, उस समय कह देंगे नहीं नहीं त्याग कर देते हैं रस मलाई, रसगुल्ले आदि, बीमार भी होंगे ना तो भी उधर ही जाएंगे, हाँ और उधर से बढ़िया खा पी करके आए। तो संसार के भोग ऐश्वर्य का त्याग ऐसे ही व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको ये पता होगा कि भगवत ऐश्वर्य, भगवत भक्ति का स्वाद संसार के सभी स्वादों से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। परम दृष्ट्वा, ये परम आस्वादनीय वस्तु है, ये हायर टेस्ट भगवत भक्ति में मिलता है, तभी संसार के, ना केवल संसार के स्वर्ग के, ना केवल स्वर्ग के ब्रह्म लोक तक के ऐश्वर्यों को भक्त त्याग देता है, ब्रह्म लोक तक के वैभव अर्थात भोग आदि सब का त्याग कर सकता है। इतना सहज नहीं होता, लेकिन उसको ये समझ होती है तो सहज रूप से त्याग देता है। एक तो व्यक्ति ये चीजें त्याग करके भक्ति करने के लिए चला, भक्त बनने के लिए चला, तो ये तो फिर भी समझा जा सकता है कि चलो इस फायदे को लेकर के वो व्यक्ति चलता है। लेकिन साथ में उसको दूसरा भी एक सावधानी लानी पड़ेगी जीवन में, जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि उसे अपराधों से बचना पड़ेगा। किससे बचना पड़ेगा? अपराधों से बचना पड़ेगा, भक्त अपराध से बचना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी का कल घटना बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी के प्रति अभाव अंदर ले आए, मन में, खाली मन में ही ले आए, बस बोला नहीं, कुछ नहीं किया। अपराधों से बचना कितना आवश्यक है, और अपराध किस स्तर पर लग सकता है, हम विचार करें। उनके छोटे भाई श्रील रूप गोस्वामी की घटना है कि रूप गोस्वामी भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते 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 इतने ऊंचे स्तर पर चले गए कि उनके सामने भगवान का साक्षात अनुभव हो रहा है। जैसे ही वो आंखें बंद करके भजन कर रहे हैं तो सीधा लीला का दर्शन कर रहे हैं। अब भगवान की लीलाएं कैसी विचित्र हैं, भगवान की लीला इतनी माधुरी से युक्त है कि भगवान विष्णु के अंदर भी ये विशेषता है। 64 गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण, जिनमें से कि 60 गुण तो भगवान विष्णु के अंदर हैं। इतने 60 क्वालिटीज तो भगवान विष्णु के अंदर हैं, लेकिन वो 4 विशेषताएं भगवान विष्णु में भी नहीं। कौन सी 4 विशेषताएं? कि भगवान की रूप माधुरी ऐसी विशेष है, ऐसा अनुपम रूप है कि स्वयं कृष्ण भी अपने रूप के प्रति स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा रूप किसी अवतार का है ही नहीं, ऐसा विशेष भगवान का दर्शन है। इसे रूप माधुरी विशेष गुण कहते हैं। दूसरा भगवान की विशेषता है कि भगवान का लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। क्या है? लीलाएं बड़ी अद्भुत है, ऐसी ऐसी मनोहारी लीला करते हैं कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति नहीं, चोर भी उनकी ओर आकर्षित हो सकता है, ये सोच करके, यार ये चोरी की कला बहुत अद्भुत है। एक विषयी व्यक्ति भी उनकी लीलाओं को देख करके आकर्षित हो सकता है, चाहे उसको कृष्ण का गूढ़ तत्व रहस्य समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान एक विषयी व्यक्ति की तरह ऐसे होली लीला खेलते हैं कि आज भी ब्रज में होली के समय में लाखों लोग आ जाते हैं केवल होली खेलने के लिए। अब वो कृष्ण को समझे या ना समझे कि ये विषय है तो इनको छू ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी लीला इतनी मधुर है कि गिरे हुए से गिरे हुए लोग लाखों की संख्या में आज भी ब्रज मंडल में पहुंच जाते। क्या लीला माधुरी है उनकी, उनकी लीला माधुरी के पीछे तो बड़े बड़े लोग पागल हो जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठ लोग जो कि इतने ब्रह्म में लीन हो जाते हैं कि केवल भगवान विष्णु का सनक सनातन सनत और सनंदन जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जब वो इस प्रकार से इतनी तल्लीनता के साथ ध्यान करते हैं तो उनका सारा शरीर ही चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में बदल जाता है। इतने परफेक्शन वाले सिद्ध लोग बोले, जब वो भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध थोड़ी सी उनकी नाक में जाती है तो वो भी पागल हो जाते हैं कृष्ण के प्रति। रूप को ये सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मलीन है, उन्होंने जैसे ही भागवत के कुछ श्लोकों को सुना तो वो पागल हो गए भगवान कृष्ण के पीछे। जिन्होंने पैदा होते ही घर छोड़ दिया और 1-2 श्लोक सुनने के बाद पूछा कि ये व्यक्तित्व जिसके बारे में आप बता रहे हो कि इसका इतना सुंदर रूप है, इतना मधुर है, इसके बारे में और कुछ जानते हो? कि बोले हमारे गुरु जी जानते हैं। गुरु जी कौन है? बोले वेद व्यास जी कौन है? उन्हीं के पिता जिनको छोड़ के आए थे। बोले छोड़ के आने के पश्चात भी उनकी शरण में चले गए। बोले मैंने सुना है आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिनके बारे में ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं, जिनका रूप ऐसा विशेष है। बोले हाँ मैं जानता हूं, तो मेरे को बताओ ना और कितने श्लोक जानते हैं। बोले 18,000 श्लोक हैं उनके बारे में, पूरा भागवत है 12 स्कंद के साथ। बोले मेरे को सिखाओ। सारा भागवत उन्होंने सीखा और सीख करके फिर पागलों की तरह विचरण कर रहे, उन्हीं लीला कथाओं का गुणगान करते हुए। भगवान का ऐसा विशेष रूप माधुरी, भगवान की ऐसी विशेष लीला माधुरी। तीसरा गुण है भगवान का वेणु माधुरी, जो किसी अवतार में है ही नहीं। ऐसी वेणु माधुरी की जब वो वेणु बजाते हैं तो जो चीजें तरल हैं वो जड़ बन जाती हैं और जड़ चीजें तरल बन जाती हैं। वेणु नाद का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि बहती हुई यमुना पत्थर बन जाती है और गिरिराज जी की शिलाएं जो पत्थर हैं वो बहने लग जाते हैं। क्या अद्भुत वेणु माधुर्य है। और चौथा गुण है प्रेम माधुरी। चौथा गुण क्या है? प्रेम माधुरी। ऐसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते, संसार में तो प्रेम है ही नहीं कि वास्तव में देखा जाए तो। बोले प्रीति करना तो केवल उन्हीं को आता है और किसी को आता ही नहीं, इतना प्रेम करता है। राधा रानी उनके उस प्रेम के चलते कई बार उनसे रूठ जाती है और वो रूठ करके, इसको कहते हैं हाँ प्रेम कलह। एक काम कलह होती है, एक प्रेम कलह होती है। काम कलह अपने स्वार्थ के कारण आदमी रूठता है, एक प्रेम में दूसरे के स्वार्थ सुख के लिए आदमी रूठता है। जिसमें राधा रानी जानती हैं कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो सबके स्वामी हैं, जिनकी सत्ता पर सबकी सत्ता निर्भर करती है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणायव। जो सूत्र अर्थात धागा जिन मणियों को धारण करता है, अर्थात माला की सत्ता उस धागे के कारण नहीं है। ऐसे ही सारे संसार की, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, सब कुछ कृष्ण पर ही निर्भर करता है। बोले वो कृष्ण अंदर मनी मन अंदर ऐसा प्रेम करते हैं, जब देखो जो प्रेम करता है ना वो झुकना सीखता है, वो झुकता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति जिससे वो प्रेम करता है। तो कृष्ण की इच्छा होती है कि मेरे को राधा रानी के चरणों का स्पर्श करना है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है। तो कृष्ण मनी मन सोचते हैं मैं ये मेरे से इतना प्रेम करती, मैं इनके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं, उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहते हैं। अब कोई बहाना चाहिए कैसे रखें। ये प्रेम की पराकाष्ठा को राधा रानी जब हृदय में समझ जाती हैं तब वो रूठ जाती हैं और रूठ करके अब मनाना पड़ेगा, कृष्ण को बहाना मिल गया। देखो साधारण आदमी तो क्या सोचेगा कि कृष्ण बहुत साधारण है बिल्कुल, यहां तो हम अपनी इच्छाओं के कारण रूठते हैं। स्त्री पुरुष जो आपस में रूठते हैं, हमारी ये इच्छा की पूर्ति नहीं की आपने इसलिए रूठते हैं। इसको कहते हैं व्यक्तिगत कामना की सुख के लिए। और यहां राधा रानी किसके सुख के लिए रूठ रही है, किसकी इच्छा को महत्व दे रही है? कृष्ण की इच्छा को। कृष्ण चाहते हैं उनके चरणों में अपने मस्तिष्क को रखना, जिसको सुन सुनना तो दूर, आदमी अनुभव करके आश्चर्य में पड़ जाता है कि फिर भगवान कौन है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुदामा जी भगवान है या कृष्ण भगवान है, सुदामा जी के चरणों को असुरों से धो रहे हैं। ये केवल राधा रानी से ऐसा प्रेम नहीं कर रहे, उनका सभी भक्तों से ऐसा प्रेम है ही कि भगवान जैसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पित अपने आप को करता है, भक्त के चरणों की धूल को भी भगवान अपने ऊपर धारण करना चाहता है। और भक्त इस बात से डरता है कि भाई भगवान अगर मेरे चरणों की धूल लेंगे तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। एक भक्त थे ब्रज में, भजन करते हुए ऐसे विचरण करते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर समय कृष्ण उनके पीछे पीछे चल रहे। आप पीछे क्यों चलते? बोले तुम्हारे चरणों की जो धूल आती है ना, उससे मैं अपने आप को पवित्र कर लेता हूँ। ऐसी दीनता है उनके, ऐसा प्रीति। तब से उन्होंने क्या किया, अपने पीछे कंबल लटका लिया और पीछे कंबल नीचे जमीन से घिसता हुआ चलता है वो। अब साधारण आदमी कैसे समझेगा, वो तो कहेगा ये पागल आदमी क्यों, बाकी को थोड़ी दिखाई दे रहे हैं कि पीछे इनके कृष्ण चलते हैं। तो कृष्ण सभी भक्तों से ऐसी प्रीति करते ही हैं, इसी को तो प्रेम कहते हैं। लेकिन संसार में बाह्य प्रेम जो ऊपर से कुछ दिन के लिए ऐसा आदमी दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत मरता हूं, कुछ दिन ही ऐसा दिखाता है, बाद में तो फिर फंडा फूट जाता है। एक रशिया में या किसी जगह पर कुछ लोगों ने ऐसा नाटक किया, दो कपल थे तो उन्होंने एक दूसरे से प्रेम का संसार में प्रदर्शन करने के लिए बोला हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने हथकड़ी पहन लिया, सब कुछ बोले एक साथ ही करेंगे। विचार करो, वो पूरा इंटरनेट पे वायरल हुआ बाद में, तो रिकॉर्ड बना ऐसे साथ रहने का। कितने महीने का, बोले सालों का नहीं, जीवन का नहीं, लोग कहते ना जन्म जन्म का हमारा साथ है। 3 महीने बाद उन्होंने सबके सामने रिकॉर्ड को तोड़वाया और उस हथकड़ी को कटवाया, वो भी लाइव दिखाया गया था। और उसके बाद वो फिर प्रेम आपस में हमेशा के लिए टूट गया, बोले हथकड़ी की टूटते ही इतने परेशान हो गए, नहीं हथकड़ी तोड़ो अब नहीं साथ रह सकते। और हथकड़ी टूटने के बाद फिर कभी साथ रहे ही नहीं, इतने प्रेम कहां, तो इतने प्रेम का प्रदर्शन किया जा रहा था कि नहीं हम तो हथकड़ी बांध देते दूसरे के साथ। संसार में प्रेम है ही नहीं किसी भी स्तर पर, देवताओं के स्तर पर भी प्रेम केवल और केवल काम है और कुछ नहीं, काम को ही स्वार्थ कहते। तो राधा रानी कैसी प्रेम की पराकाष्ठा का आदर्श रख रही है, बोले रूठ रही है, लेकिन उनका रूठना किस लिए है, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना चाहते। और फिर मनाना कृष्ण के लिए बहुत भारी हो जाता है, इतनी पराकाष्ठा पर जाकर के मान करके बैठती हैं, रूठ करके बैठती हैं कि मान का किला बना लेती हैं, उसको मानगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मानगढ़ में ये लीला हुई थी, मानगढ़ अभी भी विराजमान है, उसका नाम ही मानगढ़ इसी कारण से पड़ा। तो गढ़ माने किला, जिस किले को तोड़ पाना कठिन है, बोले कृष्ण हांप जाते हैं माता राधा रानी को मनाने के लिए कि राधे इतना कष्ट तो मेरे को रावण को मारने में नहीं हुआ जितना तुम्हें मनाने में हो रहा है। अर्थात कृष्ण ही चाहते कि वो बारंबार उनके चरणों में स्पर्श करते रहे करते रहे करते रहे। और ऊपर से प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मैं बहुत दुखी हूं, तुम जल्दी से मन जाओ और अंदर से राधा रानी जानती हैं कि नहीं, इनको मनाने में क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये कैसी भक्ति की वैचित्री है, इसको लीला वैचित्री कहते हैं, इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं। ऐसा प्रेम का गुण केवल कृष्ण में है, भगवान विष्णु कभी नहीं सोच सकते कि लक्ष्मी देवी के चरण दबाऊं मैं उनमें प्रेम है लेकिन उस स्तर का प्रेम नहीं है जिस स्तर पर कृष्ण प्रेम का यहाँ पर प्राकट्य कर रहे। तो कृष्ण की 4 माधुरी कौन सी हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, ये कृष्ण की चार अत्यधिक विशेषताएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इन चार विशेषताओं के कारण कितने पूजनीय हैं, कितने श्रेष्ठ हैं कि भगवान विष्णु का भी वहां तक पहुंच नहीं। उन श्री कृष्ण की उस लीला का आस्वादन यहां बैठे बैठे कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अरे रूप गोस्वामी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं?
रूप गोस्वामी
भजन करते उन सारी लीलाओं को देख रहे हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाओं को देख रहे हैं। जैसे एक कुसुम सरोवर की लीला चल रही है जिसमें कि राधा रानी निरंतर कृष्ण का ही सोचती है, तो उन्होंने देखा एक सुंदर सा पुष्प है जो बड़ा ही सुंदर खिला हुआ है, और सोचती ये पुष्प कृष्ण की माला में बिल्कुल बीच में लगाया जाए तो कृष्ण को बहुत सुंदर माला लगेगी। लेकिन समस्या ये कि डाल बहुत ऊंची है। अब राधा रानी उस ऊंची डाल को बार 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 उछल करके प्रयास करते हैं उस पुष्प को तोड़ने के लिए। अब भगवान कृष्ण ने ये देख लिया दूर से ही, भगवान नटखट हैं, काफी ऊंचा डाल है वो, भगवान साइड से किस समय चतुराई पूर्वक अचानक से उस वृक्ष की डाल पर पेड़ों के पत्तों के अंदर छुप जाते पता ही नहीं चलता, और वो तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी है, उनके तो भजन में जितना चाहे उतना कर सकते हैं वो, वृद्धि या घटोत्तरी। तो उन्होंने तुरंत अपने भजन से उस डाल को क्या किया, झुका दिया। और जैसे ही डाल को झुकाया राधा रानी बड़ी खुश हुई, देखो देखो ललता विशाख, देखो देखो ललते विशाख, देखो कृष्ण की कैसी विशेष, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, ये डाल अपने आप ही नीचे आ गई। लेकिन फिर से कहीं ऊपर न चली जाए तो राधा रानी एक हाथ से उस डाल को पकड़ लेती, और इतनी देर में कृष्ण देखते हैं डाल को पकड़ लिया, वो डाल से कूद जाते हैं नीचे। कौतुकी हैं, कूदते ही राधा रानी बहुत हल्की हैं, तो एकदम से उस डाल ऊपर जाते लटक जाते, तो ललता विशाखा सब चीखने लगती, अरे तुम तो इतने ऊपर चली गई। अब ऊपर से लटका हुआ व्यक्ति नीचे देख रहे हैं काफी ऊंची डाल चली, अब नीचे कूदे तो पैर टूट जाएंगे। तो सब शोर मचाने लगती हैं सारी सखियां, कोई आओ बचाओ, अब इधर कृष्ण आते स्थल में मैं हूं ना। अब पहले तो गालियां मारते हैं कि तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई आवश्यकता है, तुम लंपट पता नहीं कहां से आ गए। कृष्ण जाने लगते हैं तो राधा रानी घबराती हैं, बोले नहीं नहीं मेरी रक्षा करो, मेरे पैर टूट जाएंगे अगर मैं गिर गई ऊपर से। फिर कृष्ण उनको नीचे से गोद में पकड़ते हैं और फिर उनको उतारते हैं। ये दृश्य जब देखा रूप गोस्वामी ने, तो रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि कृष्ण कैसे कौतुक करते हैं, कैसी प्रेम लीला करते हैं। इन लीलाओं को, ऐसी विचित्र विचित्र लीलाओं को निरंतर देखते हैं, तो फिर मूवी देखने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर संसार में वीडियो गेम खेलने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भगवान की ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं जिनका के रूप देखते ही जीवन हमेशा के लिए आदमी व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए, उन लीलाओं का साक्षात दर्शन करे भक्तों के साथ, वो भी ऐसी विनोदी लीलाएं जो भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु की ही अनेकों लीलाओं को देख करके सारा संसार आकर्षित हो जाता है, कृष्ण लीलाओं को देख करके कौन आकर्षित नहीं हो। तो इन लीलाओं का वो आस्वादन कर रहे हैं, इतना ऊंचा स्तर इनकी वैष्णवता। लेकिन अचानक से वो बंद करके, आंखें बंद करके ऐसा लीला देख रहे हैं और उनको भी हंसी आ गई, वो हंस रहे हैं, अचानक से वो लीला दिखना बंद हो गई। अब ऐसा लगा जैसे कि उनके प्राणों का हरण हो गया हो, इतना दारुण दुख का अनुभव कर रहे हैं। अब तो छटपटा रहे हैं, बार 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 प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लीला ही नहीं दिख रही। अब विचार करो, हम तो लीला पढ़ने के बाद केवल सुना पाते हैं, लीला देखेंगे और देख करके सुनाएंगे तब कैसा अनुभव होगा। लीला अगर किसी ने देखी हो और देख करके वो रियलाइज अर्थात उस अनुभूति के साथ जब सुनाएगा तो कितना डूब के सुनाएगा वो, उसको कितना विरह सताएगा उसको। इसलिए आचार्य लोग तो कृष्ण की इन लीलाओं को सुनाते ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी इन लीलाओं को सुनाने से इतने बचते रहे, इतने बचते रहे कि कहीं मैंने लीला सुना तो मैं बेहोश हो जाऊं, फिर ये 7 दिन में भागवत कथा कैसे पूरी होगी। तो पूरा परीक्षित महाराज ने संकीर्तन मंडली बिठा के रखा था, जब बेहोश हो जाएंगे तो कीर्तन करना पड़ेगा, और बीच में बेहोश केवल राधा नाम लेने से ही बेहोश हो जाते हैं। इसलिए पूरी भागवत में उन्होंने स्पष्ट रूप से राधा नाम ही नहीं लिया, क्योंकि राधा रानी का त्याग, राधा रानी की प्रीति कृष्ण से ऐसी अद्भुत है कि एक लीला सोच करके आदमी पैरों तले जमीन निकल जाए, उसका बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए। ऐसी लीला है, तो ऐसी लीला जब नहीं दिखाई देगी तब क्या स्थिति होगी? एकदम छटपट आने लगी। जैसे नारद जी ने केवल हृदय में ही एक बार भगवान का दर्शन किया, जब छोटे से बालक थे, उदासी पुत्र थे, अपने गुरुजनों के अनुसार उन्होंने भक्ति किया, तो एक झलक भगवान ने दिखाया, उसके बाद हृदय से गायब हो गए। अब तो नारद जी आड़े टेढ़े अनेक प्रकार के आसन करने लगे, हर प्रयास को कर रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन ही नहीं होता। तब फूट फूट कर रोने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, अब आपको पुनः दर्शन तब तक नहीं होंगे जब आप पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाओ। ये तो आपको अनुभूति कराने के लिए मैंने ऐसा कृपा किया। कई बार अयोग्य लोगों के ऊपर भी गुरुजन वैष्णवजन ऐसी कृपा कर देते, और फिर वो अनुभूति के साथ आदमी मेहनत करता, यार वो एक झलक चाहिए बस। अगर ऐसा शुरुआत में लोगों की दया ना हो तो फिर हम इस मार्ग में चलेंगे ही नहीं, हमें ऐसा लगेगा ये मार्ग अंधविश्वासों को मारे। जैसे हम अपने जीवन में जब जुड़े, हमने एक प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र की पुस्तक पढ़ी, प्रभुपाद एक आध्यात्मिक राजदूत, शायद यहाँ भी रखी होगी। तो हॉस्टल में कोई भी नहीं था, हम पहले पहुंच गए थे, छुट्टियां चल रही थी, तो हमने उस पुस्तक को 7-8 दिन में कंटिन्यूस पढ़ करके खत्म किया। तो जिस दिन वो पुस्तक खत्म हुई, अकेले ही थे हॉस्टल में, अचानक से प्रभुपाद जी ने सपने में दर्शन दिए, और ऐसे अद्भुत दर्शन, वो कमरे में ही बैठ करके, उसी कमरे में सामने प्रभुपाद जी कुर्सी पे बैठे हुए और कई सारे भक्त लोग कमरे में बैठे हुए थे, विद्यार्थी लोग, हम सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी की बड़ी मधुर मुस्कान, और प्रभुपाद जी बुलाते हैं, इधर आओ, और बुलाया, और बुला करके फिर इधर पास में, और तुम्हारा प्रचार कैसा चल रहा है? रूपा जी का हंसी का एक दांत भी दिखता है, उसमें सोने का दांत है रूपा जी का। तो पास में बिठा करके, और तुम्हारा प्रचार कैसा चल रहा है? मतलब प्रभुपाद ये सारे भक्त लोग आपकी कृपा से जुड़े हुए हैं। रूपा ऐसे पीठ थपथपाते हैं हाथ से, तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन तो पैर जमीन पे ना टिकेंगे, और विश्वास हो गया। उस समय कोई प्रचार विचार कोई चालू नहीं किया था, लेकिन अंदर विश्वास हो गया आने वाले समय में या हॉस्टल में प्रचार प्रसार होगा, और प्रभुपाद जी का ऐसा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अनुभव करा रहे। तो उस दिन के बाद फिर दिखाई दिए, लेकिन ऐसी फीलिंग, ऐसा स्पष्ट रूप से फिर दर्शन नहीं हुए। फिर कई बार हम गंभीर भी नहीं रहते भक्ति मार्ग में, इस कारण से भी हमारे ऊपर कृपा नहीं होती, लेकिन उस समय से विश्वास बैठा हुआ है, प्रभुपाद आज भी साक्षात है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि हम अंधविश्वास के मार्ग पर बढ़, ये तो स्पष्ट रियलाइजेशन से। अब ऐसी घटना के साथ कैसे कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है? और फिर वो घटना घटित भी होती है, फिर प्रचार भी होता है, भक्त लोग जुड़ते भी हैं, जो उन्होंने जैसा अनुभव कराया ऐसा वही अनुभव नहीं, उसके बाद और भी अनुभव कराए, लेकिन और वो जिस जैसे भी अनुभव कराते हैं प्रभुपाद जी, वो साक्षात रूप से घटित होते हैं, साक्षात रूप से। असंभव असंभव हमने कार्यों को देखा, तो उसी आशा में आदमी उसके लिए प्रयास करता है, यार फिर से दिखने चाहिए, फिर से कुछ ऐसी घटना। जब प्रभुपाद जी ये दिखा सकते हैं तो फिर धाम में भी तो ले जा सकते हैं, फिर भगवान की लीलाओं के भी तो दर्शन करा सकते हैं, और कराते हैं। ऐसे भक्तों के रियलाइजेशन से फिर आदमी संसार की झलक नहीं पाना चाहता। फिर व्यक्ति चाहता है प्रभुपाद जी को, हाँ प्रभुपाद जी जब सामने नहीं है, विग्रह स्वरूप में नहीं है, बाहर कहीं देखा तो किसी स्त्री को देखा तो उसकी ओर आकर्षण उस समय महसूस कर सकता है, लेकिन जैसे ही जब प्रभुपाद जी का अनुभूति वो पास में आता है, देखता है, वातावरण में आता है, तब उसके अंदर पुनः वही इच्छा जागृत हो जाती है, प्रभुपाद जैसे वैष्णवों की कृपा मिल जाए बस। और देखो वैष्णव इतने महान होते ही हैं कि इनका अनुभूति से ही इतना आनंद आता है कि उनके पास बैठते ही एक अलग अनुभूति होती है। सच्चे वैष्णवों को चार प्रकार के शुभों की प्राप्ति होती है। कितने शुभ? चार प्रकार के। पहला शुभ होता है, उसको कहते हैं जगत प्रीणन। क्या? जगत प्रीणन। अगर कोई वैष्णव बनता है अर्थात भक्ति आई उसके जीवन में, तो भक्ति के छह लक्षण होते हैं, उनको कहते हैं क्लेश अग्नि, समस्त क्लेशों से उसे तुरंत राहत मिलती है। क्लेश कितने होते हैं? तीन प्रकार के। क्लेश कितने? तीन। पहला क्लेश पाप, पापों के कारण क्यों हम दुखी होते हैं, तो क्लेश कितने प्रकार के? तीन। इनमें से पहला कौन सा? पाप। पाप क्यों करता आदमी? उसके पीछे उसका जड़ दूसरा है, उसको दूसरा क्लेश कहते हैं, वो है वासना। पाप कर्म क्यों करता है? अंदर वासना जागृत हो जाती है। तो पाप का मूल क्या हुआ? वासना। बोले वासना भी एक क्लेश है, तभी तो काम कर किया ना उसने, कर्म किया, पाप युक्त कर्म किया, तो वासना भी क्लेश है, तो जड़ खत्म होगी तभी तो भक्ति को क्लेश अग्नि माना जाए। बोले वासना का भी एक जड़ है, वो तीसरा क्लेश है, उसको कहते हैं अविद्या। उसको क्या कहते हैं? अविद्या, अज्ञान, जिसमें आदमी सोचता है, जबरदस्ती सोचता है इसमें सुख है, जबकि उसमें सुख नहीं। जैसे सुअर सोचे मल में सुख है, लेकिन वास्तव में मल में सुख है ही नहीं, उसका अविद्या के कारण ऐसा सोच रहा है। इसलिए क्लेश कितने हुए? तीन। कौन कौन से? पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी तीन प्रकार के होते हैं, पाप भी अपने आप में तीन प्रकार के होते हैं। इनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात जो संचित है हमारे पास, प्रारब्ध तो जो भोग रहे हैं, और प्रारब्ध जो संचित हैं। कौन से? जो संचित हैं, जो स्टॉक में हैं, प्रारब्ध जो भोग रहे हैं, जो पक करके आ गए, और तीसरे क्रियमान, जो अभी वर्तमान में हम पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्तमान में पाप कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्रियमान, संचित अर्थात अप्रारब्ध, और जो भोग रहे हैं वर्तमान में वो प्रारब्ध। कुछ आचार्य चार प्रकार से भी इसको वर्णित करते हैं, उसको बीज रूपी पाप कर्म कहते हैं। ये बीज को ही वासना कहते हैं। इसलिए तीन प्रकार के क्लेश, पाप जो तीन प्रकार के, उसके बाद वासना, उसके बाद अविद्या। ये क्लेश अग्नि भक्ति का लक्षण है, आपको इन सभी क्लेशों से राहत देती है भक्ति। दूसरा भक्ति का लक्षण क्या है? शुभदा, आपको शुभों को देने वाली है। भक्ति से क्या मिलेगा? शुभों की प्राप्ति होगी। शुभ कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। शुभ कितने प्रकार के? चार। पहला सुख है जगत प्रीणन। पहला सुख क्या है? जगत प्रीणन। जगत के लोग आपके पास आते ही, यदि आप भक्त बन गए हो तो आपके पास आते ही उनको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। भक्तों के पास बैठते ही इतना सुकून का अनुभव होता है, जो दुनिया में आपको कितने भी ऐश्वर्य और भोग दे दिए जाएं, आपको अनुभूति नहीं होगी। सच्चे भक्तों की बात हो रही, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत, उनके पास बैठते ही, क्योंकि वहां हमें विश्वास है कि इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं। वो एकदम से जले हुए तवे के ऊपर से छींटे मार दो ना, छुन करके एकदम से ऐसे उसका चित्त शांति का अनुभव करता है, इतना आनंद का। चाहे उसको वो वैष्णव कुछ खाने को दे, पीने को दे, नहीं दे, कुछ कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास में ही बैठने से इतना आनंद का अनुभव होता है। इसको क्या कहते हैं, जगत प्रीडन, अर्थात जगत प्रियता का अनुभव करता है, अत्यधिक आनंद का अनुभव करता है, अपने दुखों की निवृत्ति का अनुभव करता है आपके पास बैठते ही। सुसाइड भी करने जा रहा हो और अगर उसे वैष्णव का सानिध्य मिल जाए ना, तुरंत वो सब भूल जाएगा। ये एक भक्तों का शुभ है कि उनके पास कुछ तो ऐसा है जिसके चलते दुनिया के कष्टों को मिटा सकते हैं। दूसरा शुभ है जगत अनुराग। क्या? सारा जगत उनसे अनुराग करने लगता है। जब उनको इतना आनंद का अनुभव मिल रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। तो वैष्णव लोग कैसे बन जाते हैं, सारे जगत के प्रेमी बन जाते हैं, सारा जगत उनको लाला करके भेंट चढ़ाने लगता है। आप हमारे घर कब आएंगे, हम आपको प्रसाद खिलाना चाहेंगे, आप ये दक्षिणा लीजिए, जबकि उन्होंने क्या दिया उनको, एक रुपया देना, किसी से मांगना इतना सहज नहीं होता। लेकिन भक्तों के लिए लोग प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। होना चाहिए सच्चा भक्त, हम समस्या हमारे साथ, हम सोचते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन सामने वाला प्राण क्यों नहीं दे रहा है मेरे लिए। उसको कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम मेरे लिए प्राण क्यों नहीं दे रहे, वो अपने आप देने के लिए तैयार होता है। लेकिन सच्चे भक्त होने चाहिए, ये शुभ है, ये भक्ति से ही आता है। अगर हमारे अंदर भक्ति है तो ये आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। यही अंतर होता है संसार में एक दुष्ट में और एक वैष्णव। हाँ, बोले एक दुष्ट मिलने से मिलत एक प्राण हर ले। एक दुष्ट जब मिल जाता है तो ऐसा लगता है अब ये पता नहीं, कुछ खिलाना दे मेरे को, जहर भर। हाँ, और वैष्णव उसको कहते हैं जो बिछुड़ने से प्राण हर जाते हैं, बिछुड़ते एक प्राण हर ले। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब जिसका बिछुड़ता है तो लोग प्राण त्याग कर देते हैं। सनातन गोस्वामी ने जब प्राण त्याग किए तो रूप गोस्वामी से सहन नहीं हुआ, और रूप गोस्वामी उसके बाद अपनी कुटिया से निकले ही नहीं, और कुछ ही समय में भगवत धाम चले। इसे वैष्णव कहते हैं कि लोग हा हा करके आपके प्रति इतना प्रीति करते हैं कि आपको विरह को सहन ही नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जगत अनुराग। हाँ, तीसरा है आपको त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है, ये शुभ है। जिसमें क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है। त्रिविध सुखों में कौन से सुख मिलते हैं, उसको ब्रह्म सुख मिलता है। कौन सा सुख मिलता है, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख उसको कहते हैं जिसका एंड नहीं होता। आप रसगुल्ले का सुख चाहेंगे तो थोड़े समय में एंड हो जाएगा। ब्रह्म सुख कैसा है, बोले ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ये अनंत सुख है जिसमें आदमी डूबा ही रहता है, ये समुद्र है। तो उसको ब्रह्म सुख का स्पर्श प्राप्त होता है, वो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। दूसरा उसको ऐश्वर्य सुख भी उसके पास आता है अपने आप। ये नहीं सोचो कि भाई मैं ब्रह्म सुख मिल रहा तो मेरे को संसार की गाड़ी घोड़ा बाकी संसार की सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उसके पास अपार ऐश्वर्य आता है। त्रिविध सुख में दूसरा सुख कौन सा कहते हैं? ऐश्वर्य सुख। दुनिया कमा कमा करके मर जाती है, पेट पालना भारी पड़ जाता है, और भक्तों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। दुनिया भी आजकल ऐसा कहते, पैसा तो साधुओं के पास है, बोले बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं, पैसा तो आज के समय में बोले साधुओं के पास। और सत्य पैसे ही, संसार के किसी ऐश्वर्य का अभाव ही नहीं होता वैष्णव के पास, अपने आप आता है, दरवाजे पे खटखटाता है। ऐसे कितने सारे चरित्र देखने में आते हैं। ऐश्वर्य की वर्षा होती है कई बार, वर्षा आपने तो पानी की बूंदों की वर्षा देखी होगी। भगवान दास तोमर जी थे जो हर साल मथुरा में आकर के भंडारा करते थे, और वे एक बार गरीब हो गए, उनके पास भंडारे के लिए कुछ नहीं रहा। और भंडारे में पहले वो वैष्णवों को पहले भंडारा करते थे, दान दक्षिणा देते थे, फिर बाद में ब्राह्मणों को देते थे। तो मथुरा के ब्राह्मण उनसे बहुत चिढ़ते थे, लेकिन वो देने वाले की जैसी इच्छा वैसा ही तो आदमी करेगा। वो सोचते थे ये ब्राह्मणों का सम्मान कम करते हैं, वैष्णवों का ज्यादा करते हैं। इस बार इनके पास कुछ था ही नहीं, अकाल पड़ा था तो सब लूट लुटा दिया था उन्होंने, तो भंडारे कराने के लिए उनके पास कुछ थोड़ा सा ही लेके आए। ब्राह्मणों को जिम्मेदारी देते थे, बोले भैया आप अपने आप में मैनेज कर लो, इतना सा ही है, जिसको जैसे देना है आप कर लो। ब्राह्मणों ने तो इस बार ज्यादा निमंत्रण दे दिया लोगों को, जिससे कि इनकी हंसी उड़ाई जाए, इनका मजाक बनाया जाए, और बना कुछ नहीं है अंदर। लेकिन बाद में दक्षिणा जब देने लगे तो सोने की वर्षा होने लगी, बूरे की वर्षा हो रही है, आटे की वर्षा हो रही है, मतलब बरसात हो रही है, सब देख रहे हैं, जिससे कि मेरे भक्त का कोई उपहास ना उड़ाए। ऐसे कहते हैं ऐश्वर्य उड़ के आता है, कोई दे या ना दे, भीख मांगना नहीं पड़ता। वास्तव में भक्तों को मांगना ही नहीं चाहिए, वैराग्य जीवन में मांगना एक उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण होता है। नहीं मांग, और मांगना है तो केवल कृष्ण के लिए मांगो, लेकिन उतना प्रीति नहीं है हमारी, उतनी प्रीति छलकनी भी तो चाहिए बाकी क्रियाओं में। कहना तो सहज है कि हम कृष्ण के लिए मांगते। इसलिए त्रिविध सुख में दूसरा सुख कौन सा सुख है? ऐश्वर्य सुख। वो अपने आप आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, अरे ये कमाते नहीं धमाते नहीं, फिर भी इनके पास इतना सारा वैभव कहाँ से आता है? इस्कॉन को लेकर के इंडियन पार्लियामेंट में प्रश्न खड़ा हुआ था कि इस्कॉन के डिवोटीज इतने ऐश्वर्यशाली कैसे जीवन जीते हैं, कहाँ से आता है इनके पास पैसा? सब लोग आश्चर्य में डूब जाते, इतनी व्यवस्थाएं कहाँ से आता है आपके पास? अपने आप आता है। तीसरा सुख है वैषयिक सुख। विषयी सुख भी अपने आप उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन ऐसा वैष्णव इन विषय के सुखों को, ऐश्वर्य आदि के सुखों को स्वयं के लिए उपयोग में नहीं लाता तो और आगे बढ़ जाता। तो कौन 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 से शुभ आए उसके पास? जगत प्रीडन, जगत अनुराग, त्रिविध सुख जो तीन प्रकार का होता है, ब्रह्म सुख, ऐश्वर्य सुख और वैषयिक सुख। विषय आपके पीछे भागेंगे, लड्डू पेड़ा, हाँ बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, घूमने फिरने की चीजें आपके पास। आप आइए ना अमेरिका, आइए ना, और लोग दुनिया मर जाएगी अमेरिका जाते जाते, कैसे जाएं कैसे जाएं। और भक्तों से निवेदन करते लो, आप आइए इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। भक्तों के पास विषयों को भोगने के लिए टाइम नहीं आप किसी घर में जाकर के दो रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और भक्तों के पास घरों की लाइन लगी रहती है, आप आए नहीं, हमने आपको कहा था, आप हमारे यहाँ आए नहीं, आप उनके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए कैसी वैचित्री है। चौथा शुभ है कि भक्तों में सभी गुण अपने आप विकसित होते हैं, अपने आप, भक्ति की ऐसी सामर्थ्य। प्राप्त होते हैं उनको? सारे गुण उनके अंदर, जितने भी देवताओं के गुण हैं वो सब गुण उनके अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाते। क्या अद्भुत भक्ति का प्रभाव है। इससे कहते हैं क्लेश अग्नि, दूसरा लक्षण शुभदा, ये चार प्रकार के शुभ बताए हमने। तीसरा है सांद्रानंद, आनंद की घनीभूत अवस्था जो ब्रह्मानंद को भी मात दे दे, विशेष आनंद प्रदान करती भक्ति। तो कृष्ण लीला का रूप गोस्वामी उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब संसार में किसी का पैसा ही लूट जाता है तो कैसे आदमी छटपट आता है, लेकिन यहां रूप गोस्वामी उस आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव कर रहे हैं जो कि इन तीनों सुखों से ऊपर है, त्रिविध सुख से ऊपर है। सांद्र आनंद, आनंद का घनीभूत अवस्था, आनंद का समुद्र अचानक से गायब होते ही ऐसा लगा कि प्राण हर जाएंगे। इतनी देर में जब अनेकों उपाय करने पर भी उनको समाधान नहीं मिल रहा है, सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं उनके पास के, भैया मेरे को लीला नहीं दिखाई दे रही, लीला दर्शन नहीं हो रहा है। अब सनातन गोस्वामी जानते हैं कि विषय थोड़ी बन गए कि लीला बंद हो गई हो विषयों के कारण, विषय बन जाने से भी भगवत अनुभूति नहीं रहती, तो क्या कारण हो सकता? बोले केवल दूसरा कारण है, किसी भक्त के प्रति आपका अपराध हो गया है। अरे मैं तो लीला देख रहा था, आंखें बंद करके देख रहा था, मैंने कौन से भक्त के प्रति अपराध किया? मैं तो किसी भक्त के संपर्क में भी नहीं आया, कहां से अपराध हो गया होगा मेरा? बोले नहीं, अपराध के अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। हमको क्या लगता है भगवान ने दया करने का मूड बंद कर लिया होगा? मेरी इच्छा जब तक दिखाना है लीला दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। बोले भगवान ऐसी इच्छा करने की सामर्थ्य नहीं रखते? सामर्थ्य नहीं रखते स्वराट होते हुए, परम स्वतंत्र होते हुए? बोले हाँ, क्योंकि भगवान ने ही दुर्वासा को कहा है भक्ति वश्य भगवान अहम भक्त पराधीनो, मैं तो नारद भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्ति के वशीभूत हूं। इसलिए भक्ति का एक लक्षण है कृष्ण आकर्षणी, आप कृष्ण को वश में कर लोगे, ऐसे बांध लोगे जैसे एक मदारी बंदर को बांध करके नचाता है। कृष्ण विवश हो जाते हैं अपनी भक्ति के सामने आकर्षित होने के लिए। कृष्ण की ये इच्छा नहीं है कि उनकी इच्छा के अनुसार हो, भक्त की इच्छा के अनुसार कृष्ण कार्य करते हैं, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा को जानने वाले वही तो एक हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीले भगवान जो श्री कृष्ण है वही प्रेम की रीति जानते हैं, बाकी तो संसार में कोई जान ही नहीं सकता। तो सनातन गोस्वामी ने कहा भैया एक ही कारण है, भक्त अपराध हुआ है बस। तो बोले भैया मेरे को तो पता ही नहीं कि कौन से भक्त के प्रति अपराध हुआ, तो क्षमा कैसे मांगू, क्या उपाय करूं? इसको कहते जाने और अनजाने, हम तो जानबूझ के ही करते निरंतर, अनजाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या हुआ? बोले एक उपाय करो, अपराध का निस्तारण करने के लिए भंडारा करो, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करो, और रूठे हुए भक्त भी अगर बढ़िया प्रसाद रख दिया जाए तो प्रसाद लेने तो पहुंच ही जाते हैं। तो उन्होंने ये इनके इन प्रकार विरक्त होते हुए भी प्रसादम का बढ़िया आयोजन किया, सभी वैष्णवों को बुलाया गया, सब वैष्णव आए। तो उन्होंने देखा सब लोग आ गए, सनातन गोस्वामी ने कहा अब आप सभी से क्षमा मांगो सामूहिक रूप से। उन्होंने दीन वचन कहते हुए अरे भाई समस्त वैष्णवों को हमारा दंडवत प्रणाम, आप सभी वैष्णवों में से किन्हीं के प्रति हमारा कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिए। हम तो एक बद्ध जीव हैं, हम तो साधारण जीव हैं। जीव तो बेचारा भटक ही जाता है, जीव की सामर्थ्य कहाँ जो इतना ध्यान रखे। इसलिए किसी के प्रति इनको प्रसाद दे दिया करो, जो बाहर से आते हैं जाते हैं, कुछ प्रसाद लेके जाओ आप लोग। तो हम जीव हैं, बद्ध जीव हैं, हमसे भूल होना तो स्वाभाविक है। हम कोई सिद्ध महात्मा तो है नहीं, किसी के प्रति भी हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम आपके चरणों में बारंबार निवेदन कर रहे हैं। और वो इतने आर्त भाव से, क्योंकि उनका तो कुछ छूट गया था ना, उनको वो चाहिए था। हमें कई बार कहा जाता है क्षमा मांगो, तो हम तो क्षमा एरोगेंट वे में मांगते, आप कह रहे हो इसलिए मांग रहा हूं, जैसे इसको कुछ मिलने वाला ही नहीं है क्षमा मांगने के बाद। लेकिन इनको तो पता है ना कि मेरी क्या चीज मेरे से बिछुड़ रही है, जिसके चलते अगर मैं क्षमा मांग लूंगा और सामने वाला अगर मन जाएगा, मेरे को क्या चीज नहीं मिलेगी। आर्त भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं को सुनकर के एक वैष्णव खड़ा हो गया, बोले हाँ आप प्रार्थना तो आज कर रहे हो, लेकिन आप जैसे साधु संत होकर के भी ऐसे आप लोग अपराध करते हैं। बोले क्या मतलब प्रभु, हमने तो कोई, बोले कल की बात है, जब हम आपके सामने से गुजर रहे थे तो हमारी टांग लंगड़ी है, तो हमारी चाल को देख करके आप हंस करके मजाक उड़ा रहे थे, अभी आप क्षमा मांग रहे हो, आपको हंसना शोभा देता है क्या? बोले कब की बात है, हमने तो आपको देखा ही नहीं, देखा नहीं, हंस कैसे रहे थे फिर? देख करके आंख बंद करने का नाटक किया और हमारी चाल पर आप हंस रहे थे, हम लंगड़े हैं तो क्या हुआ? आप साधु लोगों को शोभा देता है कि आप शरीर के स्तर पर आप नीचे आकर के आप किसी की लंगड़ी चाल पर देख करके आप हंस रहे थे? बोले हम हृदय से सच कह रहे हैं, हम इस बात पे नहीं हंस रहे थे। तब उन्होंने रिलेट किया, अच्छा मैं उस समय जब भगवान की लीला देख के हंस रहा था, उसको इन्होंने कैसे ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, ये मेरी चाल को देख करके हंस रहे हैं। तब उन्होंने उनके चरणों में क्षमा मांगा, मैंने इसलिए नहीं हंसा, लेकिन आप अगर इस बात को ऐसे ले रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यहां से हम इमेजिन करें कि एक भक्त अपराध कैसे लग जाता है, जिस अपराध के लिए आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा, आपकी व्यवहारिक क्रिया से सामने वाले को आपने ना भी पॉइंट आउट किया हो, लेकिन सामने वाले ने हर्ट फील कर लिया, उसको कैसा लग गया? उसको हर्ट हो गया, कैसी विचित्र बात है। इतना हर्ट हुआ तो कृष्ण को पसंद नहीं हुआ। अब बताओ कृष्ण के यही जानते नहीं है कि इन्होंने नहीं हंसा इनके ऊपर, लेकिन कृष्ण इतना सेंसिटिव अपने डिवोटीज को बनाना चाहते हैं कि आपकी किसी भी क्रिया से जीव मात्र को हर्ट नहीं होना चाहिए। अपराध इतना सूक्ष्म होता है। अब बताओ भैया, ऐसे अपराधों से बचने के लिए है किसी माई के लाल की सामर्थ्य? भक्त बनना कितना कठिन है, कितना कठिन है। इसलिए एक बात बोलने से पहले 50 बार एक भक्त सोचता है कि मेरी किसी बात को कैसे बोलूं जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो। और यहां तो ऐसा गोल गोल घुमा घुमा करके तीर ऐसा बढ़िया उस पर संधान करते धनुष के ऊपर कि तीर भी लग जाए राजनीति वाला, और सामने वाले का अधिकार ना हो कि हमें पॉइंट आउट कर सके कि मैंने कुछ गलत बोला है, और मैं पूरी तरह से जानबूझ के हर्ट करने के लिए ही बोल रहा हूं। जैसे मोदी बोलता है ना ममता को, दीदी ओ दीदी, तो दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात को कह सके कि मोदी जी गलत कह रहे हैं। ये राजनीति की भाषा है, जिस भाषा में व्यक्ति जानबूझ करके कोई अपराधजनक शब्द नहीं बोल रहा है। शब्द एकदम बहुत ही सम्माननीय है, लेकिन वो तीर से भी ज्यादा चौंक करके जा रहा है, इतना हर्ट कर रहा है। ये राजनीति है। दूसरी ओर वैष्णव नीति ऐसी है कि जिस वैष्णव नीति में आप ऐसे शब्द बोल ही नहीं सकते, आप मीठे भी बोल रहे हो अगर हर्ट हो रहा है तो आप अपराध के शिकार हो जाएंगे। लेकिन वैष्णवता में प्रायः लोग थोड़ा सा फिलोसफी को जानने के बाद उस फिलोसफी के शब्दों के द्वारा ही ऐसा राजनीति करते हैं कि भक्तों से बड़ा कोई राजनीतिक भी नहीं हो सकता। जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर, वो बहुत चतुर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन कृष्ण नहीं मिलते संसार की आपको राजनीति से। राजपद मिल जाएगा वो भी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद आपको उठा करके फेंक दिया जाएगा, कुछ और नहीं मिल पाएगा। लेकिन भक्त उसको कहते हैं जिसका व्यवहार, व्यवहार खाली बोलना ही नहीं, और प्रायः हमारे अपराध बोलने से ही होते हैं अधिक मात्रा। कोई व्यक्ति अगर हमारे व्यवहार से हर्ट ना भी हो रहा हो तो हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल करके ऐसा पानी फेर देंगे, बोलने मात्र से ही वो व्यक्ति हर्ट हो जाए, क्यों? बोलने की तमीज तो हमारे अंदर है ही नहीं। कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोलना चाहिए, परिणाम में हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमें कभी कृष्ण के ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। ये आदर्श रूप गोस्वामी ने अपने जीवन से दिखाया हमें, इसलिए क्षमा याचना के लिए कितना तत्पर होना चाहिए व्यक्ति को, कितना सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। खाली सूखी क्षमा से अगर क्षमा नहीं मिले तो प्रसाद खिला के क्षमा मांगो, उनके कपड़े धोकर के क्षमा मांगो, हाँ उनके चरणों में गिर के, ऐसे नहीं क्षमा कर दो हमें, बात खत्म। हाँ वैष्णव जन भी कई बार बहुत खिंचाई करते हैं हमारे उद्धार के लिए। अब जैसे मैं बेवकूफ आदमी आपके सामने बैठा हूं, मैंने गुरुजी के प्रति क्या अपराध किया? नासिक में महाराज गए हुए थे, हम भी उनके साथ में थे, तो वहां के भक्तों ने महाराज का मैसेज में अनाउंसमेंट कर दिया कि महाराज प्रवचन देंगे तो निगड़ी मंदिर में, तो सब जगह मैसेज चला गया। हाँ पुणे में, नासिक में नहीं, पुणे, तो सब जगह मैसेज चला गया। दूसरे दिन महाराज कह रहे मेरे को थोड़ा सा हेडक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, उनको जाकर के बोल दो आप लोग आपस में कोई जो लेता रेगुलरली वो लेक्चर ले ले। वो जाकर के सूचना दिया, वहां गोपति प्रो प्रेसिडेंट थे तो आश्चर्य में डूब गए, अरे हमने तो सब जगह मैसेज डाल दिया है और लोग आते ही हैं उसके कारण, और फिर कोई रेगुलर चेहरा ही दिखाई दे जो रोज ही पकाता हो, जैसे यहाँ आप लोगों को रोज फेस करना पड़ता अपने को, उस स्थिति में कितना। उन्होंने कहा कि महाराज आपका कोई शिष्य ही ले ले, तो फिर घुमा फिरा करके मेरे सर पे बात आ गई, तो फिर मेरे को बैठना पड़ा लेक्चर लेने। उनका व्यासासन है तो व्यासासन पे वो लोग क्या करते, कोई सन्यासी आते तो कपड़ा बिछा देते, कपड़े के ऊपर सन्यासी को बिठाते, और अन्यथा कोई ब्रह्मचारी लेता है तो कपड़ा हटा करके व्यासासन, उसी व्यासासन पर बिठाते। और शास्त्र ये कहता है कि जिस आसन पर गुरुजन बैठे बैठे उस पर हमें नहीं बैठना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप अलग से कोई कुर्सी दे दो, मैं उस पर बैठ के प्रवचन दे दूंगा। बोले नहीं नहीं हमारा नियम है, आप यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठ के लेक्चर देने के लिए तैयार हो गया। मैंने जय राधा माधव गा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गा दिया, श्लोक खोला, इतनी देर में पीछे से महाराज टक 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 करते हुए पीछे से प्रकट हो गए कमरे से आकर। और जैसे ही आ गए मैंने देखा महाराज आ गए, मैं व्यास आसन से नीचे कूद गया। अब कूद गया तो महाराज आकर के बैठ गए। महाराज ने कहा राधा माधव हो गया? तो भक्तों ने कहा हाँ हो गया। श्लोक हो गया? हाँ हो गया। तो महाराज ने प्रवचन चालू कर दिया, प्रवचन दे दिया, प्रवचन दे के वापस चले गए। अब महाराज वापस चले, कोई बात नहीं चीतनी, अचानक से महाराज ने बात करना बंद कर। अब मैं परेशान यार, मैं महाराज के साथ में किताब पढ़ता था, पुस्तक जब वो प्रसाद लेते थे, तो उस समय महाराज ने क्या किया, उसी दिन से प्रभुपाद जी का लेक्चर अपने टेप रिकॉर्डर में लगा करके कैसेट और वहां से चालू कर दिया, प्रसाद खा रहे हैं लेक्चर चालू करके, लेकिन मेरे को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, मैं जाके बैठा हूँ, मेरे मुंह मुंह की ओर भी नहीं देख रहे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे यार महाराज के, क्या हो। मैं समझ गया कि यही कारण होगा कि मैं जिस आसन पे महाराज बैठे हैं उस आसन पे बोले तुम कैसे बैठ गए। मेरे को असिस्टेंट ने बताया, दूसरा जो गुरु भाई था, महाराज इस बात पे नाराज है आपसे। तो मैंने कहा, मैंने तो कहा था उनको कोई कुर्सी दे दो, मेरे को उस पर बैठ करके दे दूंगा मैं, लेकिन उन्होंने मेरे को जबरदस्ती बिठा दिया। तो आप महाराज को बताइएगा ऐसा, उन्होंने महाराज को बताया तो महाराज कहते हैं तूने तो, उसने तो शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, तो फिर तेरे को कोई कुएं में कूदने के लिए कहते तो तू कूद जाएगा क्या। मैंने बोला उसके कहने पे मैंने ऐसा किया तो तुम्हें कोई कूदने कूदने कुएं में बोलेगा तो तुम कूद जाओगे क्या। बोला नहीं, फिर कैसे कर दिया। अब तो मैं बार बार महाराज के आगे पीछे घूमता घूमता बार बार क्षमा मांगू, लेकिन वैष्णव भी देख लेते ना कि वास्तव में इसके हृदय में कितना क्षमा की तीव्रता है। आखिरकार महाराज ने 3 दिन बिता दिए, और 3 दिन मेरे लिए बहुत कठिन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब क्या फायदा जीवन जीने का। आखिरकार महाराज एक छत पे बैठे, मैंने गया वहां देखा, मैं फिर महाराज के चरणों में गिर पड़ा और उनकी कृपा से मेरे को रोना आ गया। तो मैं पड़े पड़े काफी देर तक रोता रहा, महाराज देखते रहे मैं रोता रहा, फिर महाराज ने उठाया, उठ जाओ, और फिर महाराज ने बोला कि खोपड़ी लगानी चाहिए अपनी, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कई बार अपराधों की क्षमा मांगते हैं, लेकिन उस क्षमा की इंटेंसिटी नहीं होती। दूसरा, हम जिन गलतियों को करते हैं उन्हीं गलतियों को दोहराते भी चले जाते हैं। हम दादागिरी से चाहते हैं कि हमें कोई क्षमा करे, तो ये कोई तौर तरीके नहीं होते। इसलिए वैष्णव जन चाहते नहीं कि कोई व्यक्ति दुखी हो, लेकिन उनके अंदर करुणा है, वो सुधार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे अंदर एक तीव्रता आए जिससे कि हम पश्चाताप करें, वास्तव में हृदय से पश्चाताप करें। मुंह से बोलने से पश्चाताप करने से भगवान थोड़ी मिलेंगे, हृदय से पश्चाताप करेंगे तब हमारे हृदय का कलुषण ये दूर होगा, हमारे हृदय की गंदगी दूर होगी और हम अच्छे वैष्णव बन पाएंगे। इसलिए वैष्णवों का क्रोध, वैष्णवों का डांटना फटकारना, गुरुजनों का डांटना ये दिव्य होता है, इसमें उनका स्वार्थ नहीं रहता, इसमें उनको अपने मान प्रतिष्ठा की नहीं पड़ी रहती, इसमें उनकी दया होती है। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर जो हमारा खुद की सोच है, जिसके चलते हम आए दिन दूसरे लोगों को फिलोसफी का उपयोग करते हुए हम हर्ट करते हैं, बहुत खतरनाक है। इसलिए भैया, दुनिया में सबसे कठिन काम है तो एक ही काम है, एक ऐसा उत्तम कोटि का वैष्णव। लेकिन नहीं बनेंगे तो भगवान भी नहीं मिलेंगे, बनना पड़ेगा। इसलिए जितना अधिक हम भक्ति करेंगे उतना ही हम अपने जीवन में शुद्धि का अनुभव करेंगे, शुद्धि आएगी, दिमाग ठीक होगा, दिमाग ठीक होगा तो हम अपराधों से बचा पाएंगे, और अपराधों से जीवन काल में ही बचाना है हमने, कोई सोचे बूढ़े होकर के बचाएंगे तो जितना आप लंबा अभ्यास कर लोगे अपराध करने का उतना ही आपके लिए कठिन होगा। इसलिए मुंह से बहुत कम बोलना सीखना चाहिए, ज्यादातर हम अपराध करते हैं सिर्फ बोलने के कारण, बोलने से अपराधी होते हैं। इसलिए 50 बार तोल करके शब्दों को बोलना सीखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी की इस घटना से, सनातन गोस्वामी की जो दूसरी घटना हमने सुनाई थी, सनातन गोस्वामी ने तुरंत मन ही मन में अपराध फील करते रूप गोस्वामी की परिक्रमा लगाया। इधर रूप गोस्वामी ने क्षमा मांगा उन वैष्णवों से और फिर उनका लीला दर्शन पुनः आरंभ हुआ। आगे चल करके इनकी और भी लीलाएं हैं सनातन गोस्वामी की, जो कि अनंत शिक्षाओं से भरी पड़ी हैं, तो उनकी चर्चा भी हम थोड़ा सा और एक दो दिन कथा चलेगी रूप सनातन गोस्वामी, उसके बाद अन्य गोस्वामियों की कथा आरंभ होगी। आप सबका धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सार ये है कि हम ना केवल ऐश्वर्य से भोगों से बचें संसार के, बल्कि हमें भक्तों के साथ कैसी डीलिंग करनी चाहिए उनके प्रति अपराधों से भी अवश्य बचना होगा। भक्त अपराध हमें उत्तम कोटि का वैष्णव बनने से रोक देगा। हम कनिष्ठ कोटि के भक्त बन सकते हैं एक बार कृष्ण नाम लेने से, लेकिन उससे कृष्ण नहीं मिलेंगे। वो शुरुआत है भक्ति मार्ग की, कृष्ण तो उत्तम भक्त बनने से ही मिलते हैं। और अगर कोई ऐसा बनता है तो वो अनेकों पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है, ना केवल वो अपना उद्धार करवाता है। वैष्णव अपराध की गंभीरता कितनी अधिक होती है, जिसमें कि हमें इतना सजग होना होता है कि हमारे किसी भी उठने बैठने से, बोलने से, चालने से हर्ट नहीं होना चाहिए सामने वाला। और हम इस चीज को एहसास कर सकते हैं कई बार कि हमें छोटी छोटी चीजें, कोई व्यक्ति अगर कुछ खा रहा है तो खाते खाते भी हमने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पूछा और खुद ही चट कर गए तो उससे भी सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है। तो देखो वैष्णवों का व्यवहार कैसा होगा फिर। महाराज सेवी आदि इसके उदाहरण है, जिन्होंने 40 दिन भूखे रहने के पश्चात भी दूसरों का सोचा। जब हम अपना सोचते हैं तो हम किसी न किसी को हर्ट अवश्य ही करते हैं, जब हम दूसरों का सोचते हैं, अपने सुखों की तिलांजलि देते हैं, सदैव दूसरों के सुख का सोचते हैं, तभी हम हर्ट करने से बच पाते हैं और उसी को वैष्णव कहते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। तो जो भी भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी हम थोड़ा सा एक दूसरी क्लास के लिए जाएंगे, तो आप सबके नाम उच्चारण नहीं कर पाएंगे जो जो भक्त लोग कथा सुन रहे हैं। नियमित सभी आप सुनते ही हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी भक्तों को। हरे कृष्णा।